शुरुआती कथन पहले से रिकॉर्डेड। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार। अब हमारी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक के काम पर बात करेंगे जिनके विचारों ने खासकर जेंडर यानी लिंग को लेकर हमारी समझ में सचमुच एक तरह का भूचाल ला दिया। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी दार्शनिक जूडिथ बटलर की। बटलर का नाम सुनते ही हाँ, अक्सर जो विचार सबसे पहले जहन में आता है वो है जेंडर परफॉर्मेटिविटी, या जिसे हम कह सकते हैं लिंग प्रदर्शनशीलता। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका सार यह है कि हमारा लिंग, मतलब पुरुष होना, महिला होना या कुछ और, ये कोई अंदरूनी कोई पक्की चीज़ नहीं है, बल्कि ये समाज के सिखाए हुए तरीकों को लगातार दोहराने से बनता है। तो लिंग वो नहीं जो हम हैं, बल्कि वो है जो हम लगातार करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम बटलर के इसी क्रांतिकारी विचार और उनके काम के दूसरे अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्यों इतने प्रभावशाली रहे हैं और आज की दुनिया में इनकी क्या अहमियत है। चलिए बटलर की इस विचार यात्रा को करीब से देखते हैं।
बिल्कुल, बटलर के विचारों को समझने के लिए हाँ, उनका कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। उनकी जड़ें 20वीं सदी के आखिरी दशकों के बौद्धिक और सामाजिक माहौल में हैं। वो एक उथल पुथल का दौर था, कह सकते हैं। एक तरफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब उत्तर संरचनावाद जैसे अकादमिक विचार जोर पकड़ रहे थे। ये वो सोच है जो मानती है कि भाषा और समाज वो असलियत को सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि बनाते हैं। और दूसरी तरफ नारीवाद की तीसरी लहर थी और क्वियर थियोरी यानी लैंगिक अल्पसंख्यकों से जुड़े सिद्धांत भी उभर रहे थे। समाज में भी काफ़ी हलचल थी। एड्स महामारी का गहरा असर था, LGBTQ+ अधिकार आंदोलन तेज हो रहे थे और पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उस पे गर्मागर्म बहसें चल रही थीं। बटलर का काम इसी सब के बीच पनपा। उन पर सिमोन द बोवार का तो असर था ही, पर साथ ही मिशेल फूको का भी, जिन्होंने बताया कि कैसे ज्ञान और भाषा असल में ताकत या सत्ता से जुड़े होते हैं। और फिर जैक डेरिडा, जैक लकान, इन जैसे विचारकों का भी गहरा प्रभाव दिखता है उनके काम में।
अच्छा, और इसी माहौल में 1956 में जूडिथ बटलर का जन्म हुआ क्लीवलैंड ओहायो में। एक दिलचस्प बात यह है, जो शायद कम लोग जानते हों, कि बटलर खुद को नॉन बाइनरी मानते हैं, मतलब न पूरी तरह पुरुष न पूरी तरह महिला, और अपने लिए वेदिम सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। ये उनके अपने ही सिद्धांत से कितना मेल खाता है कि जेंडर कोई तयशुदा दायरों में बंधा नहीं होता। उनकी फिलॉसफी से पहली मुलाकात की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। कहते हैं कि स्कूल में शरारतें करने पर सजा के तौर पर उन्हें एक रब्बी के पास नीतिशास्त्र पढ़ने भेजा गया था। वही उन्होंने पहली बार गंभीर दार्शनिक सवालों पर सोचा। बाद में येल यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में PhD की। फिर कुछ समय अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के बाद 1993 में वे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले आ गईं, जहां वे आज भी प्रोफेसर हैं। लेकिन दुनिया भर में पहचान तो उन्हें 1990 में आई उनकी किताब जेंडर ट्रबल से मिली।
हाँ, जेंडर ट्रबल ने तो जैसे अकेडमिक दुनिया में तहलका ही मचा दिया था। यहीं से उनके सबसे चर्चित विचार की शुरुआत होती है ना? सही कहा, जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी उनकी सबसे मशहूर किताब है, इसमें कोई शक नहीं है।
इसी में उन्होंने लिंग प्रदर्शनशीलता का सिद्धांत रखा, मतलब उन्होंने कहा कि जेंडर कोई अंदरूनी एहसास या पहचान नहीं है, बल्कि बार बार दोहराए जाने वाले तौर तरीकों, हाव भाव, पहनावे, जिसे वो शैलीबद्ध कामों, स्टाइलाइज्ड एक्ट्स कहते हैं, उसका नतीजा है। और ये दोहराव ऐसा भ्रम पैदा करते हैं मानो ये सब कुछ एकदम नेचुरल हो, स्वाभाविक हो। ये किताब क्वेर थ्योरी की एक तरह से बुनियाद मानी जाती है।
फिर 3 साल बाद 1993 में आई बॉडीज दैट मैटर ऑन द डिस्कर्सिव लिमिट्स ऑफ सेक्स, क्योंकि कुछ लोगों ने जेंडर ट्रबल की आलोचना की थी कि इसमें शायद शरीर की, बॉडी की अनदेखी हुई है। तो इस किताब में बटलर ने समझाया कि उनका मतलब ये नहीं कि शरीर होता ही नहीं, बल्कि जिसे हम जैविक लिंग या बायोलॉजिकल सेक्स कहते हैं, हमारी उसकी समझ भी समाज, संस्कृति और भाषा, जिसे वो डिस्कोर्स कहते हैं, उसी से बनती है।
और ये प्रदर्शनशीलता, ये कोई मर्जी का खेल या नाटक नहीं है, ये समझना जरूरी है।
और फिर हाँ, 9/11 की घटनाओं के बाद उनके काम में एक नया मोड़ आया। उनका ध्यान जेंडर से थोड़ा हटकर राजनीति, नैतिकता, हिंसा और प्रिकैरिटी की तरफ गया। प्रिकैरिटी मतलब हमारी सबकी नाजुकता, असुरक्षा, चोट खाने की जो आशंका है। 2004 में आई उनकी किताब प्रिकैरियस लाइफ, द पावर्स ऑफ मॉर्निंग एंड वायलेंस इसी दौर की उपज है। इसमें वो सवाल उठाते हैं कि समाज क्यों कुछ लोगों की जिंदगियों को दूसरों से ज्यादा कीमती समझता है, किसके मरने पर शोक मनाया जाता है, किसके पर नहीं।
तो चलिए इस लिंक प्रदर्शनशीलता वाले विचार पर थोड़ा और रुकते हैं, क्योंकि ये समझना वाकई जरूरी है ना। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो बटलर कह रहे हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे फौरन लड़का या लड़की का लेबल दे दिया जाता है, फिर समाज उसे उसी खांचे के हिसाब से व्यवहार करना सिखाता है, जैसे लड़कों के लिए ये वाले खेल, ये रंग, ये हाव भाव, लड़कियों के लिए दूसरे। और हम सब ये चीजें बचपन से लगातार दोहराते रहते हैं, अनजाने में ही सही।
बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। और यही लगातार दोहराव, जिसे बटलर शैलीबद्ध कृत्यों की पुनरावृत्ति कहते हैं, ये धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमें लगने लगता है कि हम स्वाभाविक रूप से ऐसे ही हैं, जैसे ये हमारी अंदरूनी सच्चाई हो, जबकि बटलर के अनुसार ये सब सीखा हुआ है, समाज द्वारा थोपा गया प्रदर्शन है। पर यहाँ प्रदर्शन या परफॉर्मेंस का मतलब वो स्टेज वाली एक्टिंग नहीं है, जिसे आप अपनी मर्जी से चुनते हैं और फिर खत्म कर देते हैं।
हाँ, ये फर्क बहुत अहम है। मतलब ये कोई सुबह उठकर तय करने वाली बात नहीं कि आज मैं कौन सा जेंडर प्ले करूंगी या करूंगा, बल्कि ये एक तरह की सामाजिक स्क्रिप्ट है जिसे हम अनजाने में लगातार निभाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समाज में स्वीकृत होना है, पहचाना जाना है, ये हमारी आदत बन जाती है, हमारे होने का तरीका बन जाती है। तो सार ये है कि लिंग कोई अंदरूनी चीज नहीं, बल्कि एक सामाजिक आदत है जिसे हम लगातार दोहराते हैं। हम लिंग होते नहीं, हम लिंग करते हैं।
एकदम सही कहा। और बटलर इससे भी एक कदम आगे जाते हैं, वे पारंपरिक नारीवादी सोच के सेक्स यानी जैविक लिंग और जेंडर यानी सामाजिक लिंग के फर्क पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम प्राकृतिक या जैविक सेक्स मानते हैं, अरे भाई, हमारी वो समझ भी तो भाषा और समाज के जरिए ही बनी है। डॉक्टर जब कहता है लड़का है या लड़की है, तो वो भी तो एक सामाजिक क्रिया ही कर रहा है, वो सिर्फ प्रकृति का वर्णन थोड़ी कर रहा है। इसलिए किसी शुद्ध जैविक सच्चाई तक पहुंचना वो मुमकिन ही नहीं मानते।
बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे हम एकदम पक्का विज्ञान, बायोलॉजी मानते हैं, वो भी सामाजिक अर्थों से पूरी तरह अछूता नहीं है।
हाँ, और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए अपने बाद के काम में बटलर ने प्रीकैरिटी यानी हमारी सबकी नाजुकता और चोट खाने की आशंका पर जोर दिया। उनका कहना है कि हम सब इंसान होने के नाते एक दूसरे पर निर्भर है और खतरे में है, एक तरह की वल्नरेबिलिटी है हम सब में, और इसी साझा एहसास को एक नई तरह की वैश्विक राजनीति का आधार बनाना चाहिए। ऐसी राजनीति जो हिंसा का विरोध करे और आपसी जिम्मेदारी पर टिकी हो। इसी से जुड़ा है ग्रीवेबिलिटी का विचार, यानी यह सवाल कि समाज किनकी जिंदगियों को शोक मनाने लायक समझता है और किनकी नहीं। ये दिखाता है कि कैसे कुछ समूह, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा असुरक्षित बना दिए जाते हैं।
अगर हम बटलर की तुलना दूसरे विचारकों से करें तो सिमोन द बोवार का वो मशहूर कथन है, औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। बटलर इस बात को कहां तक ले जाते हैं? क्या वो इससे आगे जाते हैं?
हाँ बिल्कुल, बटलर द बोवार से प्रेरणा जरूर लेते हैं, लेकिन उनसे कई कदम आगे जाते हैं। द बोवार ने दिखाया कि औरत बनना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बटलर तो औरत और मर्द जैसी स्थिर श्रेणियों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। वे कहते हैं कि ये श्रेणियां खुद सत्ता के खेल का नतीजा हैं, कोई कुदरती सच्चाई नहीं है ये। वे फुको के विचारों को भी जेंडर पर लागू करते हैं, ये दिखाते हुए कि कैसे सामाजिक संस्थाएं, नियम और यहां तक कि हमारी भाषा भी हमारी लैंगिक पहचान को गढ़ती है और नियंत्रित करती है।
जाहिर है इतने बुनियादी सवालों को छेड़ने वाले विचारों का असर भी बहुत गहरा हुआ होगा, सिर्फ अकादमिक जगत में ही नहीं।
बेशक, बटलर के काम ने जेंडर स्टडीज, क्वियर थ्योरी और नारीवादी दर्शन को आप कह सकते हैं मौलिक रूप से बदल दिया। जेंडर ट्रबल को पिछली सदी के सबसे प्रभावशाली अकादमिक कामों में गिना जाता है। और हाँ, उनके विचारों ने साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान जैसे कई दूसरे अनुशासनों को भी बहुत प्रभावित किया है,
समुदायों के आंदोलनों पर।
हाँ बिल्कुल, बटलर की सिद्धांत लिंग की तरलता, जेंडर फ्लूइडिटी को समझने और सिर्फ पुरुष या महिला वाले बाइनरी ढांचे को चुनौती देने का एक मजबूत सिद्धांतिक आधार देते हैं। लोगों ने उनके प्रदर्शनशीलता के विचार को सिर्फ जेंडर तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि नस्ल, राष्ट्रीयता जैसी दूसरी पहचानों को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया है। हाँ, और आज भी उनकी बातें बहुत प्रासंगिक हैं, बहुत रेलेवेंट है, चाहे वो जेंडर प्रोनाउंस के इस्तेमाल का मुद्दा हो, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की लड़ाई हो, या आज के दौर में पहचान की बदलती परिभाषाओं को समझना हो। बटलर के विचार इन बहसों को समझने में वाकई मदद करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि उनकी भाषा थोड़ी मुश्किल है, अकेडमिक है।
हाँ, वो तो है।
तो इससे उनके विचारों की पहुंच कभी कभी सीमित हो जाती है। इस पर अक्सर बहस होती है कि उनके सिद्धांतों का जमीनी हकीकत में, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे इस्तेमाल हो।
उनके कुछ मशहूर कथन शायद उनके विचारों का निचोड़ समझने में मदद कर सकते हैं। जैसे जेंडर ट्रबल में उनका एक वाक्य है जिसका मतलब कुछ ऐसा है, लिंग की अभिव्यक्ति के पीछे कोई असली लिंग पहचान नहीं होती। वो पहचान तो उन्हीं अभिव्यक्तियों या प्रदर्शनों से बनती है जिन्हें हम उसका नतीजा समझते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं, पुरुष महिला, वैसा व्यवहार करते हैं। बटलर कह रहे हैं नहीं, उल्टा है। जैसा हम व्यवहार करते हैं, दोहराते हैं, उसी से हमारे पुरुष महिला होने का विचार बनता है।
बिल्कुल। और एक और वाक्य है जो प्रदर्शनशीलता को और स्पष्ट करता है, लिंग शरीर को बार बार एक खास अंदाज में ढालना है। ये तयशुदा नियमों के दायरे में लगातार दोहराए जाने वाले काम है जो वक्त के साथ जम जाते हैं और ऐसा एहसास दिलाते हैं कि ये कोई ठोस कुदरती चीज है। ये फिर से वही बात है, ये मर्जी का चुनाव नहीं है, बल्कि एक तरह की सामाजिक मजबूरी या आदत है जो हमें नेचुरल लगने लगती है।
और उनके बाद के काम से ये विचार बहुत गहरा है। शोक मनाने लायक होना ही उस जिंदगी की पहचान है जो मायने रखती है। ये सीधे सीधे बताता है कि समाज कैसे तय करता है कि किसकी जान की कीमत है और किसके खोने पर दुख मनाया जाना चाहिए और किसके नहीं। बहुत पावरफुल है ये।
हाँ, और इतनी अकादमिक गंभीरता के साथ साथ बटलर की शख्सियत के कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं। कम लोग जानते होंगे कि वो पियानो और अकॉर्डियन भी बजाते हैं।
अच्छा।
और एक जमाने में उन्होंने संगीत में करियर बनाने का भी सोचा था।
अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था।
और भले ही उनकी लेखनी काफी सघन और मुश्किल लगती हो, पर उनके छात्र और साथी उन्हें एक बहुत मिलनसार, उदार और आकर्षक शिक्षक मानते हैं, जो मुश्किल सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझाते हैं। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, उनकी अपनी नॉन बाइनरी पहचान और वी देम सर्वनाम का इस्तेमाल, ये उनके सिद्धांतों को ही दर्शाता है कि पहचान कोई स्थिर चीज नहीं है। मतलब वो सिर्फ लिखते ही नहीं, जीते भी हैं अपने विचारों को। उन्होंने इराक युद्ध के विरोध में या फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए सविनय अवज्ञा के लिए गिरफ्तारियां भी दी हैं।
अच्छा।
हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए सिद्धांत और राजनीतिक सक्रियता, थ्योरी और एक्शन, ये जुड़े हुए हैं।
जाहिर है, जब विचार इतने क्रांतिकारियों, इतने रेडिकल हों, तो आलोचनाएं भी होंगी। बटलर को भी काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी है ना।
हाँ बिल्कुल, कई तरफ से। कुछ नारीवादी आलोचकों का कहना है कि महिला जैसी श्रेणी पर सवाल उठाकर बटलर ने महिलाओं की राजनीतिक एकजुटता को कमजोर किया है, जिसकी नारीवादी लड़ाई के लिए जरूरत है। फिर जैसा हमने कहा, प्रदर्शनशीलता के सिद्धांत को अक्सर गलत समझा जाता है, मानो ये रोज कपड़े बदलने जैसा आसान चुनाव हो, जो कि बिल्कुल नहीं है।
और उनकी लिखने की शैली, उसकी भी तो काफी आलोचना हुई है।
बहुत। उनकी भाषा बहुत जटिल और अकादमिक मानी जाती है, डेंस है। दार्शनिक मार्था नूसबॉम ने तो काफी तीखी आलोचना की थी उनकी। कहा था कि उनका गद्य जानबूझकर इतना उलझाऊ है कि उसका असल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं लगता। मजाक में उन्हें 1998 में एक बेहद लंबे और जटिल वाक्य के लिए बैड राइटिंग अवार्ड भी मिला था। बटलर का जवाब यही रहा है कि भई, मुश्किल और नए विचारों के लिए कभी कभी मुश्किल भाषा जरूरी हो जाती है, उसे सरल नहीं किया जा सकता हमेशा।
इसके अलावा जो पारंपरिक लिंग भूमिकाएं हैं, परिवार की धारणाएं हैं, उनको चुनौती देने के कारण उन्हें रूढ़िवादी तबकों से भी विरोध का सामना करना पड़ा है, और उनके फिलिस्तीनी अधिकारों और BDS आंदोलन के समर्थन पर भी काफी विवाद हुआ है। उन पर यहूदी विरोधी होने के आरोप भी लगे हैं।
हाँ, ये आरोप लगे हैं। बटलर इनका जोरदार खंडन करते हुए कहते हैं कि इसराइल की सरकारी नीतियों की आलोचना करना और यहूदी लोगों से नफरत करना, ये दो अलग अलग बातें हैं, इन्हें मिलाना गलत है। यहाँ हम सिर्फ इन आरोपों और उनके जवाबों का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। एक और आलोचना कुछ ट्रांस कार्यकर्ताओं की तरफ से भी आई थी, खासकर उनके शुरुआती काम को लेकर, कि उसमें ट्रांस अनुभवों को ठीक से जगह नहीं मिली।
हालांकि बाद में बटलर ने इस पर अपनी स्थिति और स्पष्ट की और वे ट्रांस अधिकारों के मुखर समर्थक रहे हैं, तो इन आलोचनाओं को जानना भी उनके काम के प्रभाव को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है।
तो बटलर पर इस पूरी ज्ञान गोष्ठी के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, एक विचार। अगर हम जेंडर को, जैसा बटलर सुझाते हैं, एक तयशुदा पहचान के बजाय एक तरह की सामाजिक रस्मों, एक दोहराव, एक प्रदर्शन के रूप में देखें, तो क्या इससे हमारे आसपास की दुनिया को देखने का तरीका बदल सकता है? क्या हम पहचान से जुड़ी उम्मीदें, नियमों, यहां तक कि जो पूर्वाग्रह हैं, उन्हें एक नई नजर से देख पाएंगे? ये बस एक विचार है सोचने के लिए।
तो ये थी जूडिथ बटलर और उनके गहरे, प्रभावशाली और हाँ, कभी कभी विवादित विचारों पर हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है ये आपके लिए दिलचस्प और ज्ञानवर्धक रही होगी।
समापन कथन पहले से रिकॉर्डेड। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।